الحمد لله وكفى وسلام على عباده المصطفى المعطاء. قال الله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده ليجتباكم بما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المنصورين من قبل وفي هذا ليكون الرسول سبيلا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونحن المولى ونحن المنصورون. صدق الله العظيم. ہمارا یہ جو تربیت اجتماع ہے اس کا مقصد ہے ہر جگہ کے کچھ خاص ساتھیوں کو دائی بنانا، ذرا ایسا جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ کھڑے ہو جائیں کہیں دینی روشنی کے کام کو پھیلا جائے. یہ کتاب ہے، اس میں سوال اجتماع ہوتا ہے دینی دوستی کا، اس میں استعمال ہونے والے مختلف مواد کو اس میں جمع کیا جائے گا. ہفتہ والی جو اجتماع ہوگا اس کی چار ٹکڑے ہیں. اس کو پہلا ہے اس کا علمی حلقہ، پہلے جب سب کا معنفہ ہو جائے گا، سلام ہو جائے گا، طیب ہونے کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کے بعد پھر جو آپ نے فکر آپ نے یاد کیا ہفتہ والے اجتماع کی بات، اس کے اندر کی اہمیت اور فضیلت ذمہ داری کو یاد دلانے کی بات ہوگی. اس کے بعد پھر علمی حلقہ شروع ہوتا ہے. علمی حلقے سے پہلے علم کے فضائل تھوڑے سے پڑھے، اس کے واسطے ہم سب کے پاس پہلے سے کتابیں قلو جو ہوئی ہیں اللہ کا مختلف پہلو سے علمی کی ضرورت اور اہمیت کو بتایا گیا. اس میں سے صرف آدھا صفا پڑھنا کہیں سے، اس میں گھڑی سے معاذ ہے جو بہت جامع علم کی طبیعت ہے، وہ بھی اب آگے سکوں کی ہو یا کہیں سے آدھا صفا پڑھ لیتے ہیں. تو پہلے ہر حلقے سے پہلے فضائل علم کی فضیلت کے بعد کوئی کتاب پڑھ جائے، اس طرح سے پڑھ جائے کہ سننے کے بعد اس کا مذاکرہ ہو، جیسے اللہ کی پہچان ہو، جتنی کتاب پڑھیں گے پھر اس کو دوہرا سکتے، دوہراتے ہی پڑھ، دوہرانے کی نیت نہیں، ایسے سنیں گے تو توجہ سن سکتے. مطلب ذہن میں ایک ہے کہ جو پڑھنے کے بعد ہم کو دوہرانا ہے تو توجہ سے سنیں گے، تو اللہ کی پہچان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ترمذی جو عقائد کی تفسیر ہے اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ اور گھر بنے جنگل کو گھریلو معاملات کو ٹھیک کرنے کے بارے میں کتاب ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے مطالعے کے واسطے سے مکین حضرات ساتھیوں کو بتا دیں گے اگلے ہفتے کلا جگہ سے مطالعہ کر کے آتے ہیں، مطالعے کے بارے میں بھی توجہ دلانے جو علمی علماء مطالعے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں مذاکرہ ہوگا برا وہ علمی حلقہ ہوگا. اس کے بعد پھر دوسرا حلقہ اس میں شروع ہوگا وہ ہے عمل کا حلقہ. عمل کے حلقے سے پہلے پڑھیں گے یا تو محاسبے کی بات کے نام سے اس میں کچھ مواد لکھا ہوا، اس سے دوبارہ ان تین چیزوں کا روزانہ محاسبہ کرنا، دوسرے اصلاح و اخلاق کی بات کے نام سے اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں جو ایک مومن کی خصوصیات ہیں جو اصلاحی باتیں ہیں تو جامع انداز میں ذرا بنا کر دی گئی، اس میں سے کچھ پڑھیں گے، تھوڑا سا ہی پڑھنا ہے، جس میں پڑھنا ہے بس 10 منٹ پڑھنا ہے، 5 منٹ اور 2-3 منٹ دوہرانا ہے. عمل کی فضیلت کی کوئی چیز پڑھ لیجیے، اسی میں ہم کو کون سا عمل چننا ہے تو چن لیں گے. ہر عمل ہر ہفتہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی عمل پہ से राय हत्या बन सकते, और पहले जो अमल हम लोग कर चुके हैं लेकिन दिल में वक्फा हो गया तो कमजोरी आ गई तो वो अमल जरूरी है कि दोबारा फिर तय कर सकते हैं 15 दिन में उसका नष्ट करेंगे। थोड़ी देर महासभी की बात या इसरा अखलाक की बात करने के बाद अमल को ये तय कर लिया जाएगा मशवरा करके और डायरी लिखी जाएगी तो हफ्ते भर में डायरी का भी प्रोग्राम थोड़ा सा तय है प्रोग्राम कर लिया नमाजों का क्या हाल रहा, मामूलात का क्या हाल रहा, इसके अंदर है तो डायरी सब लिख के बताया ये मेरा अमल का हल्का हुआ। उसके बाद जो है दावत का हल्का यानी नए नए साथियों को लाने की फिक्र, दावत की फिक्र, दावत के हल्के से पहले ये बजाय दावत पड़ जाएंगे। इसमें कुछ हदीसें कुछ आयतें एक जगह जमा कर दी गई है, हर बार कुछ न कुछ फजीलत दावत की बनी जाएगी। इसमें और एक मजमून ये है दावत की तरबीब के नाम से, ये दावत की फजीलत और दावत की तरबीब ये ध्रुव मवाद ऐसा है कि ये बीच बीच में भी साथी से मिले नटी वगैरह अपने साथियों में जज्बा पैदा करना है, इस काम के लिए शौक पैदा करना है, सुस्ती को दूर करना है, तो इसमें भी कोई हदीस इसके अंदर जो निकालते हैं वो फोनों पर भी बोल सकते हैं। नकीब के पास ऐसा मवाद चाहिए कि वो क्या बोलिए अपने साथियों को जगह है, कोई साथी सुस्त पड़ रहा है, साथी देर से आ रहा है और साथी से बात करेंगे तो कुछ न कुछ मवाद चाहिए, हर वक्त सारे फोन उठा के आ जाओ इतना ही बोलना तो अच्छा नहीं, कल जो है आ जाइए, फलम जगह आ जाइए, कहीं को नहीं आ जाइए, यही बातें करें तो रूपा कम रहता। तो उसके बजाय हर बार कुछ न कुछ इल्म का कोई एक फजीलत का कोई सोचा टेस्ट किया जाए, कोई ना कोई ऐसी बात जो उसको शौक दिलाए इस काम में लगने की लगे रहने की, ये चीज़ें आप दो चीज़ों में से ले सकते हैं, बजाय दावत से कहीं से भी कोई भी हदीस बार बार आप बोल सकते हैं, ये हदीसें ठीक है रहना चाहिए हदीस को और ले के चलने वालों को, और दावत की फजीलत की जो बात है दावत की तरजीब के नाम से भी इसमें थोड़ा मवाद है, इंशाल्लाह कल भी उसमें यहाँ पर मैं दोहराऊंगा उसको दावत में बसीरत पैदा करने के मान से, तो वो मवाद हमेशा काम आएगा हमारे सब साथियों को अपने साथियों को तरजीब देने के लिए। थोड़ा इससे मुनासिबत होने के लिए एक हदीस में बल्कि सुनाता हूँ दावत की फजीलत के थोड़ा जो हिस्सा है उसको मुनासिबत देने के लिए। और अल्लाह ताला के दीन के लिए मेहनत किया करो जैसा मेहनत करने का हक है। अब ये जो कि हम लोगों को फिर दावत की ये बात याद करके सुनाना है, क्योंकि जैसे ये महफिल खत्म होगी देखे तीनों पूरी दावत की बात याद होगी, सुबह दो हिस्से में याद किया जाए तो शौक से आगे एक बार एक हमारी तकलीफ कर रहे थे, पहले हम उलमा से दरखास्त करेंगे उसके बाद आम जाते हैं मुझे खड़े होकर दोहराना है शायद मैं जब तक की किताब पढ़ूँ एक दूसरा को देख भी लीजिए ताकि मेरा वजराइल की जिसको खत्म होते हो गोल कभी करना ही जगह या फिर मैं थोड़ा टाइम लूँ मैं अल्लाह तला हम लोगों को तकलीफ क्या अंदाज में देने की अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन को फैलाने में इतनी मेहनत करो जैसा कि इतने बड़े अल्लाह को राजी करने के लिए जितनी मेहनत चाहिए उतनी करो, इसका हक है इस काम का, इसका हक है इतने बड़े परवरदिगार जिनके एहसान की कोई इंतहा नहीं, जिनकी बड़ाई की कोई इंतहा नहीं, उनको मनाने के लिए तो ये काम कर रहे हो दिन में, तो इतनी बड़ी जात को मनाने के लिए इतना मेहनत करनी इतनी मेहनत। फिर आगे फरमा रहे हैं तबाकुम अल्लाह तबा उन्होंने तमाम दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाने के लिए तुमको चुन लिया, तबाकुम अल्लाह ने तुमको चुना है, ये तुम्हारा तुम्हारी ड्यूटी है, ये इसी काम के लिए तुमको अल्लाह ने यहाँ रखा हुआ है दुनिया में, तुम्हारे नकली काम नहीं है, इज्जत की बात है कि नबी वाला काम, इसके लिए अल्लाह ने तुमको सुना,
एक इज्तवा कलर नबियों के लिए इस्तेमाल होता है। ये मोहम्मद मुज्तबा भी बोलते अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुज्तबा। तो तुम लोग सुने हुए हो अल्लाह तर्जुम कर, तुम भी करोगे तो कौन करेगा? काफिर इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम तुमको ही करना है, अब फरिश्ते नहीं आने वाले। और प्यारे अंदाज में फरमा रहे वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और दुई दीन में तुम पर किसी तरह की सख्ती सख्ती नहीं किए, लिहाजा दीन का काम आसान है। और जो इस्लाम के अहकाम को लिए गए हैं वो दीन इब्राहिम के मुताबिक है। सहाबा जो थे अरब लोग पहले से दीन इब्राहिम पे थे, और पहले से अरबों का रहन सहन उनकी तहजीब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही दीन से थे। और तो याद दिला रहे हैं कि ऐसे दीन की तुम दावत दे रहे हो जिसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम तो भी अल्लाह यही कह रहे हैं कि जाके तुम लोगों को दीनदार बनने के लिए बुला रहे हो, तो तुम मुश्किल रास्ते की तरफ नहीं बुला रहे, जिंदगी को आसान करने वाला दीन है। जब सामने वालों की आसानी की चिंता उनको पेश कर रहे हो उनकी भलाई की, तो तुमको शर्माना क्यों चाहिए? मैं सामने वाले को ले जाके 1000 रुपए दे रहा हूँ उसको शर्माने की बात? 1000 रुपए मांगना है जाके तो शर्म आती, क्या पैसे मांगो दे क्या हो गया? अल्लाह तरफ 1000 रुपए उसके काम की चीज है, उसके नफे की चीज, उसको देने में तुमको शर्म क्या? तुमको जो दीन दिया गया बहुत आसान दीन है, इसकी मुबल्लिग बनने में क्या मुश्किल है? और अरबों से कहा जा रहा है कि तुम दीन इब्राहिम पहले से तुम लोग भाई उसी के मुताबिक ये दीन मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम अपने बाप इब्राहिम के दीन पर। अल्लाह ताला ने तुम्हारा लफ्ज़ कुरान के नाजिल होने से पहले भी और इस कुरान में भी मुसलमान रखता है फरमाबरदार और रफाशाह, तुमको हमने इसलिए मुंतखब किया है ताकि मोहम्मद तुम्हारे लिए जहां गवाह हो और तुम दूसरों के लोगों के मुकाबले में गवाह बनो। इस आयत शरीफा में अल्लाह ताला ने दीन की दावत में इतनी मेहनत करने का हुक्म दिया है जितना कि अल्लाह ताला जैसी अजीम हस्ती को मनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जो फरमाया कि इसी काम के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में से तुमको चुन लिया है, तुम चुने हुए लोग हो, अपनी ड्यूटी समझकर ये काम पूरी मेहनत से करो। जो फरमाया कि जिस दीन की तरफ तुम दावत दे रहे हो वो आसान दीन है, जो दीन लोगों की दुनिया और आखिरत के लिए इंतहाई जरूरी भी है और लोगों के लिए आसान भी है, उसकी तरफ बुलाने का काम पूरी खुशी और इत्मीनान और कुव्वत के साथ करो। इसमें झुकने और लोगों से डरने की क्या जरूरत है? और अच्छे दिन को लेके जा रहे हो डरने की क्या जरूरत है? आपके मुसलमान तुम्हारी हैसियत मामूली नहीं है, तुम तमाम इंसानों के दरमियान हक के गवाह हो। सच्चाई की गवाही बनाने के गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो आना वाजिब है, तुम गवाह हो। जो सच्चाई का तन्हा गवाह है वो अगर गवाही छुपा ले तो कितना बड़ा जुर्म होगा। सच्चाई के गवाह हुजूर ने तुम तक पहुंचा दिया, हम तुम के गवाह ने तुमको दूसरों तक पहुंचा दिया। फजीलत के अंदर ये एक आयत हमारे सामने आई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के खातिर अपने आप को कितना मिटाया। आज हम किसी को दीन की दावत देने के लिए जाते हैं तो दिल हमारा नफ्स हमारा मोटा हो जाता है, तो हम उससे कैसे बात करेंगे, वो मालूम नहीं क्या समझेगा, वो कैसा घूर के देखेगा, मैं बात करूंगा तो बेजार हो जाएगा, उसको मैं दीन की तरफ बुला रहा हूँ तो वो अंदर से नाराज ना हो जाए। याद रखो ये जाके लोगों से बात करना ही नफ्स हमारा दीन के खातिर हमको ना जिल्लत उठाने देता ना छोटा बनने देता, और अपनी जगह में मस्त रहो कौन क्या कर अपने। लेकिन गुरु ने कितने दर्द से काम किया, जिन्हें आसान लोग वाहवा वाहवा कर रहे थे हुजूर की बात करो कबूल कर रहे थे ऐसा नहीं था, बहुत तकलीफें भी थी लेकिन अल्लाह के नबी करते थे। हजरत मुजीब अस्थी फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जमाने जाहिलियत में देखा, तो ये मुसलमान ही थे गुरु को देखा, आप फरमा रहे थे लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। मैंने देखा कि उनमें से कोई तो आपके चेहरे पर थूक रहा था, कोई आप पर मिट्टी डाल रहा था और कोई आपको गालियां दे रहा था, ये सीन था। ऐसा तो हमारे साथ कोई भी नहीं करता, हम जब दीन की बात समझाने के लिए जाएंगे लोगों को मेरी दोस्ती की तरफ बुलाने के लिए जाएंगे, भाव भाई अच्छा माहौल यहाँ है, हफ्ते में थोड़ा वक्त यहाँ हम निकाल रहे हैं, मगर पूरे हफ्ते भर में दिल से जुड़े रहेंगे, दिल में भी अमल में भी हर चीज में तरक्की होंगी। और हम जब जाके लोगों से बात करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई मिट्टी डालने वाला तो नहीं है, उनको छूटने वाला तो कोई नहीं, उनको कौन छूटता। लेकिन अल्लाह के नबी के साथ क्या हो रहा है, मैंने देखा उनमें से कोई तो आपके चेहरे पर छूट रहा, जितना मुबारक चेहरा था, पूरे अरब के सबसे बड़े खानदान के सबसे दीन की दावत शुरू करने से पहले पूरे मक्के में मुअज्जज थे, पूरे मक्के वाले आपको अमीन कहते थे, अपना फैसल बनाया था, इतनी इज्जत थी। अगर हुजूर सत्कार खामका में इज्जत इतनी इज्जत थी पहले से, अब ये दावत का काम शुरू करने से मेरी बेइज्जती हो गई, मैं बैठ जाऊँ ऐसा सोचते तो काम नहीं हो सकता। इतनी इज्जत वाली शख्सियत रहकर भी और उम्र कितनी है, बुजुर्गी की उम्र है, उस उम्र में लोग चेहरे पर टूट रहे हैं, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई आपको गालियां दे रहा है, यूं ही होता रहा यहाँ तक कि आधा दिन गुजर गया। फिर एक लड़की पानी का प्याला ले आई, जिससे आपने अपने चेहरे और दोनों हाथों को धोया और फरमाया, मेरी बेटी न तो तुम अपने बाप के अचानक खत्म होने से डरो और न किसी तरह की जिद्दत का खौफ रखो। मैंने पूछा ये लड़की कौन है, लोगों ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब है, बहुत खूबसूरत बच्ची थी, कबरानी और मनमोह ज़ाहिर की थी। यकीन रखा मेरे भाई ऐसे ही होगा, ये दर्दमंदी से करना होगा, सामने वाले वेलकम नहीं बोलेंगे, लोग कम मुतवज्जे होंगे, दसियों से मुलाकात करेंगे तो कोई एक जो है सुनेगा, दस सुनेंगे तो कोई एक उसमें से आएगा हमारे पास, कहने की घूमती हमारी कदर करे फौरन लंबे कर। तभी ये जमात का काम भी हमसे देखते थे अपनी नौजवानी में, बड़ी मुश्किल होती, कोई पूछते देने वाला नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद लोग नहीं आते। अब जो इसका 10-12 साल से एक रुजू की कैफियत मेरी जरा बड़े मन में नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी जो है विचार की मजबूत, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ जाना है रास्ते पे चलने वाले आने वाले कम है, लेकिन दाई का काम है करते जाना करते जाना करते जाना। देखिए अल्लाह के नबी के साथ ये शुरू है, मगर हुजूर उनसे नाराज नहीं हो रहे, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह की तरफ दावत देने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मशक्कत बना देते, किस तरह अपनी राह इज्जत और जान को दावत की राह में आप कुर्बान कर देते थे। हमें भी चाहिए कि दीन की तरफ बुलाने में अपना सब कुछ निसार कर दे, जान माल इज्जत और मर्तबे को बचा बचा कर न रखे। लोग बुरा मानने को क्या काम कर देते, लोग नहीं आ रहे उनका आप काम कर देते, दिल टूटे दिल टूटने का भी हो बचा बचा के ना रखे, तेरा आईना है वो आईना शकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना सा, छोड़ने जो लोग हमारा दिल जितना टूट के चूरा चूरा हो जाएगा अल्लाह के पास उतनी उसकी कदर करती है। तलबियों से ना घबराए, जैसा कि अगली हदीस में हुक्म है, अंसारी दिन का قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهدي احدكم نفسه قال يا رسول الله كيف يهدي احدكم نفسه قال يرى امرا لله عليه في المقال ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا كذا فيقول في الشك النار فيقول ربي يا كنت أحق أن تخشى. حضرت أبو سعيد رضي الله عنه رواية کرتے ہیں آپ لوگ نیچے مت دیکھیں نیچے دیکھیں تو کام ہوگا کوئی دیر میں نیند آ جائے گی سو کے اٹھے ہیں نیند ادھوری ہو کے اور نیند جو ہے کاغذ ہے بابا آپ کو چپ کے پکڑ لیتے وقت نیچے مت دیکھیں और फिर नीचे का सजेस्ट करें अभी सबको यहाँ सबके सामने पड़े आगे जिन्हें भाव की बात करना है छोटे उठ जाएंगे हाथ से नीचे के लिए बुला के हम बोलेंगे कि आ जाओ यहाँ पर जितना सुबह से याद करे तो यहाँ का सुना दोस्त कितों में याद करे अभी सुनाना है रास्ते सोने का मसला नहीं है तो करना रहिए। ये हदीस पढ़ने के बाद में एक 5 मिनट दूंगा आप लोग दावत की बात याद कर 2 बार करते हो वो देख लीजिए उसका यहाँ आके तफरीश करना। अबू सईद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उनमें से कोई अपने आप को घटिया न समझे, अपने को हकीम न समझे। हमारे अपने आप को घटिया समझने का क्या मतलब है? इरशाद फरमाया कोई ऐसी बात देखे जिसकी इस्लाह की जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से इस पर हो, कहीं ऐब देख रहा है, कहीं खामी देख रहा है अपने दोस्तों में, अपने घर में, इस्लाम की बात भेजना, बोलना नहीं, इस्लाह की बात करना। अब इस्लाम की बात नहीं करना हो सकता है, दीन पर बुलाना भी उसी किस्म की चीज हो, इसमें इस्लाम की जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ उस पर हो, लेकिन ये उस मामले में कुछ ना बोले, वहां बोलने की जरूरत है कुछ भी नहीं बोलो। तो अल्लाह ताला उसके क़यामत के दिन फरमाएंगे कि तुम्हें किस चीज ने फला मामले में बात करने से रोका था, तुमको बोलना चाहिए था, नहीं समझिए कि आपको दावत जाके लोगों को बुलाना था, दिली दोस्ती की तरफ समझाना था, फिर क्यों नहीं गए आप? आपके बच्चे का भाई थे वहां जा सकते थे, तुम्हारा कॉलेज का दोस्त था वहां जा सकते थे, तुम्हारा पड़ोसी था तुम जा सकते थे, तुम क्यों नहीं गए? क्यों बात की थी? वो अर्ज करेगा कि लोगों की डर की वजह से नहीं बोला था, कि वो मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, सामने वाला कहा डाल देता, कहा भूल कर देखता, थोड़ा नाराज होता, समझ के नहीं गया। अल्लाह ताला साहब फरमाएंगे कि मैं इस बात का ज्यादा अख्तियार था कि तुम मुझसे डरते, मैं हूँ लोगों से डरता, ये लोगों से डरने को अल्लाह अल्लाह के नबी कह रहे हैं अपने आप को खूब समझ। ये जो है इसमें फजाइल दावत के सिलसिले में बड़े अच्छे नुकात हैं, हदीसें हैं, जो वो दावत के हक में पढ़ना है लोगों को, ताकि साथियों को शौक पैदा हो। ये पढ़ने के बाद फिर इसका मशवरा होना है हर वक्त का, क्योंकि कौन कौन साथी अगले हफ्ते में किन किन से मुलाकात करेगा, दो दो तीन तीन आदमी वो जिनके नदी साहब को दे देंगे, मैं इंशाल्लाह हमारे पड़ोसियों से या फलाने से इन लोगों से मिलूंगा, फिर उसका अगले हफ्ते भी उसका जायजा होना चाहिए, जिस किससे मुलाकात हुई और उनका कितनी बार हुई, उनका रिस्पॉन्स क्या रहा, और कितनी बार मिलेंगे, क्या है आइंदा मनसूबा, इसका मशवरा दावत का हुआ करेगा। अल्लाह ताला पहली बार हमारे साथ जो है हिम्मत करेंगे इस तरह से बात करने की, अब तो खाली अब तक तो खाली खुद सीख रहे थे, सीखा रहे, हम मवाद याद कर रहे हैं, अब जाके हमको बात करना है। तो आप मवाद जितना अच्छा याद करेंगे, ये तो आपको लिख के दिया गया, ये तो खाली बेस बात करने के लिए है, बेस बाकी बेस आपके अंदर उतर जाएगी तो आप और मीठे अंदाज में अच्छे अंदाज में आप बोलेंगे, खाली बुनियाद है, ऐसा बोलना है कि सामने वाले पर असर होगा। तो ये 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, आप देख लीजिए पॉइंट से दावत की गुफ्तगू जो है कलमे की बात और फिर धीरे दोस्ती की बात सुनिए, आप थोड़ा देख लीजिए कि यहाँ आके बोलना।